नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेषाशून्यवादी पाश्चात्यदेशता नमो महाबलाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्याय तत्कंचन गौराणी श्रीराधे वृंदावनेश श्रीचैतन्य जब भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया कि हमारे अंश जिनको अनंत कहते हैं माता देवी के गर्भ में है, उनको तुम वहाँ से निकाल करके माता रोहिणी के अंदर में कर दो। यह कार्य करने से तुम्हारी बहुत पूजा होगी, तुम्हारी लोग वैसे ही पूजा करेंगे जैसे मेरी करते हैं। तो योग माया वृंदावन में आई, गोलोक से अप्राकृत धाम से, और भगवान ने जैसा कहा था वैसा कर दिया। देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में कर दिया। इधर मथुरा में हल्ला हुआ कि देवकी का सातवां गर्भ अदृश्य हो गया, तो सब लोग कंस को गाली दे रहे थे, साफ दे रहे थे कि यही कुछ करा दिया। हर एक बार बच्चे का वध करता था, लेकिन इस निंदा से बचने के लिए किसी तांत्रिक द्वारा गर्भ को उड़ा दिया। कंस को कुछ भी पता नहीं था कि सातवां गर्भ कहाँ चला गया, तो माता रोहिणी के गर्भ में आ गया। इसके बाद श्री भगवान अब जन्म लेने के लिए तत्पर हो गए। भगवान अपनी विश्वात्मा भक्ता न भगवान कर आगे संसार में मना आनक जन्म है। सबसे पहले श्री भगवान आनक बंधु भी श्री वसुदेव के मन में आए। श्री वसुदेव स्वामी कहते हैं सविव्रत पौषम नाम सह वे वसुदेव जिनके मन में भगवान उतरे हैं वे वसुदेव सहकाया सह वे अद्भुत महिमा वाले भगवान के पिता श्री वसुदेव जी भगवान के पौरुषम धाम को विधवत धारण किए हुए वैसे चमकने लगे जैसे भगवान सूर्य। पौरुषम धाम की व्याख्या अनेक आचार्य ने किया है, श्री सनातन गोस्वामी पाद इसका करते हैं श्री मूर्ति, भगवान की श्री मूर्ति। स्वयं श्री भगवान अपने स्वरूप से अपने दिव्य विग्रह से वसुदेव जी के मन में आ गए। ततो जगन्मंगलमच्युतांशं समाहितं सुरसुतेन देवी दधार सर्वात्मनात्महूतं काष्ठा तथानंदकरं मनस्तः। जब श्री भगवान वसुदेव जी के मन में आए तो वसुदेव जी का तेज बहुत बढ़ गया। इस कारण से श्री वसुदेव जी को देखना भी कठिन था, कोई भी व्यक्ति कोई जीव उनको देखने का साहस नहीं कर सकता। कंस जैसे पराक्रमी दुष्ट उनके पास आ भी नहीं सकते। दुरासदह काल है निकट आना, कोई भी उनके पास नहीं आ सकता। सूर्य यदि दोपहर को प्रकाशित है तो कौन व्यक्ति उनके पास जा सकता है, बहुत कठिन है। सूर्य पर देखना भी कठिन है। ऐसे ही भगवान जिनके हृदय में आ गए उन वसुदेव जी को देखना भी कठिन है और अति दुर्धर्ष और उनको पराभूत कर देना हरा देना ये तो अति कठिन है। कोई भी उनको अपने ज्ञान से अपने पौरुष से अपने बल से दबा नहीं सकता। जब दुरासद हो गए उनको देखना ही कठिन था तो फिर उनको दबा देना उनको पराभव प्राप्त करा देना तो और कठिन। कुछ दिन श्री वसुदेव भगवान के श्रीमूर्ति को अपने मन में रख पूर्ण प्रकाशित श्रीमूर्ति कोई ध्यान द्वारा उनके हृदय में नहीं था, भगवान स्वयं ही परिस्फुरित हो रहे थे। तो उस श्रीमूर्ति को श्री वसुदेव माता देवकी के मन में दिए। कैसे दिए तो श्रीधर स्वामी लिखते हैं वैध दीक्षा उन्होंने अर्पित किया देवकी के हृदय। देवकी कैसे लेली अपने कर्ण से कान से वसुदेव जी ने बताया माता देवकी को कि हमारे हृदय में श्री भगवान का परम सुंदर श्री विग्रह आया है, स्वरूप आया है, तो उसका बहुत सुंदर वर्णन किया। वसुदेव जी ने भगवान के चरण ऐसे हैं, भगवान के हस्त कमल ऐसे हैं, उनका मुख परम सुंदर है, उनका स्वस्थल बड़ा सुंदर है, सभी अंगों का वर्णन किया। माता देवकी बड़े ध्यान से सुन रही, तो उसने भगवान के स्वरूप को अपने मन में धारण कर लिया। यही है वैद्य दीक्षा। इसकी व्याख्या किसी ग्रंथ में नहीं है कि वह दीक्षा क्या मतलब है, परंतु इसका यही अर्थ है कि वसुदेव जी ने वर्णन किया, अपने हृदय में आए हुए भगवान का वर्णन किया माता देवकी से, और देवकी ने उसको धारण किया मन से। इस तरह भगवान को दिया जाता है, वर्णन द्वारा ही भगवान किसी के हृदय में जाते हैं। तो श्री वसुदेव जी बड़ी एकाग्रता से, बड़े स्नेह से अपने पुत्र का वर्णन कर रहे थे। यद्यपि पुत्र चतुर्भुज हैं, भगवान नारायण का रूप है, परंतु पुत्र भाव से वे हृदय में धारण किए, और माता देवकी ने उनको अपने हृदय में ले लिया। बाल विष्णु के विषय में सुनते हैं, कहते हैं ततो जगन मंगल मच्युतांसम समाहितम सुर सुते न देव दधार सर्वात्मकमात्मभूतम काष्ठा यथा नंद परम नमस्त नमस्त। मन से माता देवकी ने भगवान को लिया सुदेव जी के मुख से, मतलब कान से सुनना, सुनने पर भगवान का वह रूप जो भाषित हो रहा था उसको मन से नमस्तः देवकी ने धारण किया। समाहितम सम आहितम बड़ी ही सावधानी से वसुदेव जी ने आहितम रखा देवकी के मन में। सुर सुतेना, वसुदेव जी सुर के पुत्र हैं, इसका एक विशेष अर्थ है कि वे बहुत बड़े वीर के पुत्र हैं। तो यही बहुत बड़ी वीरता थी कि भगवान को दे सकते थे देवकी के हृदय में। उन्होंने समाहितम रखा देवकी के मन में, कृष्ण को रखा समाहितम, जैसे छोटे बच्चे को यदि पिता दे उसकी माँ को रखने के लिए तो बड़ा सावधानी से देखा। इस तरह से वसुदेव जी ने परम स्नेह और एकाग्रता से भगवान को दिया उस देवकी को, और देवकी ने दधार धारण किया। कैसे धारण किया? जैसे चंद्रमा को पूर्व दिशा धारण करती है, पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा पूरा होता है तो पूर्व दिशा में उगता है, जैसे पूर्ण चंद्र को पूर्व दिशा धारण करती है, वैसे देवकी ने धारण किया भगवान। इससे यह स्पष्ट हुआ कि देवकी से जन्म नहीं हुआ भगवान का, उसने भगवान को हृदय में धारण किया, एक दृष्टांत कितना सुंदर है। पूर्व दिशा चंद्रमा को जन्म नहीं देती है, चंद्रमा पूर्व दिशा में उगता है। इसी तरह से श्री भगवान देवकी से प्रकट हुए, वास्तविक जन्म नहीं होता है भगवान का, वे अजन्मा है। पर किसी को अपना पिता अपनी माँ स्वीकार करके प्रकट होते हैं, तो अपने नित्य पिता श्री वसुदेव को स्वीकार किए और अपनी नित्य जननी देवकी को अपनी माँ बनाए। कई लोग शंका करते हैं ये कैसा भगवान है जो जन्म लेता है, जन्म तो लेते हैं भगवान, लेकिन उनका जन्म दिव्य है। ये दिव्य शब्द पर विचार करना चाहिए। अलौक जैसे लोक में किसी मनुष्य का जन्म होता है वैसा जन्म नहीं है, पर जन्म है वो दिव्य है। यदि जन्म नहीं होता तो इतने लोग जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, जन्म होता है तभी मनाते। जगत मंगल भगवान का रूप, भगवान का स्वरूप समस्त जीवों का मंगल करने वाला है। जगत मंगल सारे संसार का सबका हित करने वाला है। अच्युतांश और भगवान का कोई भी अंश च्युत नहीं है जो श्री कृष्ण में ना हो, सर्वथा परिपूर्ण स्वरूप है। लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि भगवान श्री कृष्ण 16 कला के पूर्ण होता है, अच्युत अंश कोई अंश च्युत नहीं है। स्वयं का अर्थ है बाकी हो जाना, और स्वयं संग भगवान के पुरुषावतार नरसिंह अवतार मत्स्य अवतार भगवान श्री राम और श्री वामन देव आदि सभी अंश श्री कृष्ण के भीतर है। सबसे युक्त भगवान है, इसी कारण से कभी कभी कह दिया जाता है कि श्री कृष्ण नर नारायण के अवतार है, श्री कृष्ण वामन देव के अवतार है, श्री कृष्ण रामचंद्र के अवतार है। ये ठीक ही है, क्योंकि सभी भगवान के अंश उनके भीतर ही हैं, इसीलिए कभी कुछ कह दिया जाता है कभी कुछ कह दिया जाता है, लेकिन वास्तव में परिपूर्णतम पुरुषोत्तम है श्री कृष्ण परब्रह्म। ऐसे परम अवतारी समस्त अवतारों का मूल श्री भगवान माता देवकी के मन में है, मन में आने के बाद उदर में आए। कौन से प्रतिदिन कैलेंडर देख रहा था कि देवकी का 8वां वर्ग कब जन्म लेगा, तो एक दिन आया कारा गृह अकेले आया, वो राजा था लेकिन कोई साथ में मंत्री नहीं दिया, कोई सेवा किया तो दूसरा व्यक्ति नहीं अपील गया है तो राजा था ही सिक्योरिटी आदि किसी ने रोका नहीं कौन आया और कारा भी के मेन दरवाजे से भीतर आ गया जिस कक्ष में माता देवकी रहती थी जिस रूम में उसने प्रवेश किया। तांग्रिक्ष कंस प्रभया जितांतरा निरचयंतिम हरमन सुचस्मता आहय समय प्राण हरो हरित भान ध्रुव सिद्धो जनपुर देवकी को देखा बड़े ध्यान से तांग्रिक्षा देवकी कैसी थी प्रभया अजितांतरा अजितांतरा अजित श्री भगवान अंतरा जिसके कुक्षी में थे जिसके उदर में भगवान आ गए थे उस देवकी को कंस देख रहा है। तो उसके मुख से निकल गया स्वभक्त अपने आप को कहने लगा ऐसा मैं प्राण हर हरि सीता गुहाम सीता इस देवकी के उदर में मेरे प्राणों को हरने वाला हरि निश्चित आश्रय लिया है आ गया है। हरि शब्द का अर्थ होता है सिंह अगली अर्थ है कि गुहान छूता है जिस प्रकार सिंह है पर्वत की गुफा में रहता है और समय पर निगम करके हाथी का वध करता है यही कंस को स्मरण है कि हरि अभी देवकी के उदर गुफा में है और ये निकल करके मेरे प्राणों को हरेगा। और पहले भी प्राण हरण किया था हरि देवाशु संग्राम में भगवान ने कालमेनी का वध किया तो कौन से पूर्व जन्म में कालमेनी कालमेनी हिरण्याक्ष का पुत्र था हिरण्यकश्यप का भाई बहुत प्रसिद्ध दैत्य हिरण्याक्ष उसके नौ पुत्र थे नौ पुत्रों में कालमेनी एक था तो भगवान ने इसको मारा था अपने चक्र से मारा प्राण हर लिया था तो उसी का स्मरण कंस को हो रहा है ये हरि कह रहा है लेकिन हरि का अर्थ ये समझता है मेरे प्राणों को हरने वाला हरि ये सब देवकी के गर्भ में मेरे प्राणों को हरने वाला हरि आया वही जो सतयुग में हमको मारा था मेरे प्राणों को हर लिया था ये घटना याद आ रही है कंस को कैसे जान लिया कि हरि है क्योंकि कंस जानता था कि समस्त तेज सौंदर्य सुख ज्ञान सब हरि में है और हरि इस स्त्री के गर्भ में आ गया है इसीलिए यह इतनी प्रसन्न है। इस समय इसका चेहरा कितना चमक रहा है विरोचयंती भवनम देवकी कारागृह को विरोचयंती उज्ज्वलंती बहुत सुंदर बना रहे थे कारागृह चमक रहा जो कारागृह भूमि था पहले देवकी देवकी के गर्भ में जब भगवान नहीं आए थे तब सारा गृह बहुत उदास था, लेकिन देवकी के गर्भ में जब भगवान आ गए तो वही सारा गृह वैकुंठ जैसा सुंदर बन गया, बहुत बहुत शोभा बढ़ गई। तो कर्ण समझ गया कि इसके उदर में समस्त शोभा का तेज का आश्रय श्रीहरि आ गया। क्योंकि जन्ना यम पूरे यम यह देवकी पहले ऐसी नहीं थी, तो बहुत ध्यान से देखा यह मुस्कुरा रही है, इसके मन में बहुत बड़ा आनंद है। सुचिस्मिता का अर्थ है निष्कपट हंसी, एकांत में है और उसके मुख पर सुख की मुस्कान है। पवित्र हंसी वही देव की जो पहले रोती रहती थी, उसके पुत्रों की हत्या होती थी तो बराबर दुखी रहती थी, खिन्न रहती थी। उदास रहती थी, पर वही देवकी आज इतना खुश है, इतनी सुंदर मुस्कान है इसको, तो इससे सिद्ध है कि हरि इसके उदर में आ गया है। इसके पहले यह ऐसी नहीं थी, देखा है कंस पहले और अब अंतर है। देवकी को कह रहे साफ कि पहले यह ऐसी नहीं थी, जन्म पूरे पूरा यह देवकी ईदृशी इतनी तेजस्विनी इतनी सुंदरी नहीं थी, इतना सुख कि मुस्कान इसमें नहीं, वो दुखनी थी। वो अपने पति के साथ कारागृह में बंद हुई और उसके पुत्र नारे मार दिए गए तो यह बहुत दुखनी थी, उसका चेहरा खिन्न रहा, लेकिन आज यह आनंद में है, सुख में है। तो देवकी का प्रसन्न मुख इस बात को सिद्ध कर रहा है कि सुख के परम स्रोत हरि इसके हृदय में आ गए। और कर्ण से हरि शब्द की व्याख्या कर रहा है, मैं प्राण हर हरि, जो मेरे प्राण को हरने वाला है, पहले हरा था वो है हरि, मैं प्राण हरो हरि। तब अब सोच रहा है अकेले है, तदद्य तस्मिन करणीय मासुम, अब मुझे इसके विषय में इस हरि के विषय में क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है। तो पहले से निश्चय किया था कि मैं इसको मार दूंगा हरि, देवकी को बंद किया था कारागृह में, तो सोचता था कि देवकी की जान मार दूंगा। विवाह के दिन देवकी पर कितना संकट आया था आप लोगों ने सुना है, वही कंस आज विचार में पूरा बदल गया है। तदर्थ तस्मिन करणीय मास में जदर्थ तंत्र नविहंत निकल, अब हरि इतना निकट आ गया है, देवकी के उदर में, तो इस विषय में हमको क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है। भगवान के साथ तो वैर है ही, तो सोच रहा है, लेकिन जो भी करना होगा हरि को करूँगा, देवकी का वध नहीं करूँगा। यदर्थ तंत्र न भ्रंत विधि, यह हरि अर्थ तंत्र है, अपने मतलब का, अपने मतलब प्रयोजन के बस में है। यह देवताओं की मदद कर रहा है, देवताओं के पक्ष से मेरा वध करने आया है, तो ये अपना विक्रम तो छोड़ेगा नहीं, इसकी जो भी शक्ति है वो लगा देगा। विक्रमम न विहंति, ये अपने बल को छोड़ेगा नहीं, अपनी पूरी शक्ति लगा देगा मुझे मारने में। लेकिन स्त्रियां ससुर गुरुमत्या, यह जो कुछ करे देवकी का वध नहीं करूँगा, यह एक तो बेचारी स्त्री है, दूसरे मेरी बहन है, और तीसरे ये गर्भवती है। यदि मैं देवकी का वध कर दूंगा तो उसी दिन स्त्री मेरी मेरी संपत्ति, मेरा स्त्री चला जाएगा, मेरी आयु खत्म हो जाएगी और मेरा जस चला जाएगा। जस स्त्रियम हंत अनकाल मार, देवकी का वध करने से उसी समय मेरा जस खत्म हो जाएगा और मेरी संपत्ति खत्म हो जाएगी और मेरी आयु बीत जाएगी। इतना सुंदर विचार कम समय आ गया। वसुदेव जी विवाह के अवसर पर इसको समझा रहे थे, बहुत समय लग गया और उस नहीं समझा। अंत में वसुदेव जी ने ये कहा कि मैं पुत्रों को सौंप दूंगा, देवकी को छोड़ दो, तब वह माना। आज कोई समझाने वाला नहीं है, अपने आप कंस में यह परिवर्तन है, देवकी के प्रति दया उत्पन्न हो रही, यह स्त्री है, मेरी बहन है और गर्भवती है, इस समय इसका वध नहीं करूँगा। तो क्या सोचा कि ठीक है, हरि इसके गर्भ में है, जब हरि जन्म लेगा, भूमिष्ट होगा, तब मैं उसको मार दूंगा, देवकी को नहीं मारूंगा, देवकी को छोड़ू। एक सिद्धांत श्लोक बोल रहा है, सयेष जीवन खलुषम परे तो वर्ते तयोत्यंत निशंसते न देहे मृते तो मनुजा सपंति गंता तमंधम तमान न। सोच रहा है ऐसा जो व्यक्ति ऐसा क्रूर कर्म करता है, किसी का वध करता है, किसी को सताता है, तो वह सांस लेता हुआ भी मरा हुआ है, जीवन खलुषम परे तो, व्यक्ति प्रकट जीवित है व्यक्ति, लेकिन जीते हुए भी वो मरा हुआ है, संपरेत है, मरते तयो अत्यंत निशंसित है, जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है किसी के प्रति, किसी जीव को मारता है, दुख देता है, तो वो जीवित होते भी मरा हुआ है। मैं मार दूंगा, उसके बाद जीवित भी रहूंगा तो मरा हुआ ही, इस जीवन और मरण में क्या जीने से कोई लाभ नहीं। देवकी को मार करके जीना भी हमारे लिए मरण जैसा, संसार में मेरा अपदृश्य होगा, इसमें स्त्री का वध किया, बहन का वध किया, और बेचारी गर्भवती थी उस समय दर्द कर, तो मैं चाहता हूँ कि जीवित रहूँ, मैं जीवित ही मरना चाहूँ, जिसकी कीर्ति नहीं रहती, जिसका जिसके अब कीर्ति होती है इस संसार में, तो मरण के समान है। भगवान ने गीता में कहा है, संभाल कर सच्चा कीर्ति मरना होती है, तो सम्माननीय सम्मान व्यक्ति की अकीर्ति हो जाए, अपदस हो जाए, तो उस व्यक्ति के लिए मरण से भी अधिक दुखद है, मरणाद अतिरिक्त। अर्जुन को समझाते हैं भगवान, जब तुम कुरुक्षेत्र के भूमि से युद्ध के समय चले जाओ, युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी, सब लोग तुम्हारे पौरुष की प्रशंसा करते हैं, और जिस समय तुम यहाँ से पीछे मुड़ोगे तो सब हंसेंगे, ताली पीटेंगे और कहेंगे अंततः यह नपुंसक है, औरों की सेना को देख कर के डर गया और युद्ध से मुख मोड़ दिया, तुम्हारी निंदा होगी। पहले जो तुम बहुत जस प्राप्त किए हो, भगवान शिव को जीते हो युद्ध में, इन लोग ने निवास क्रोधों से युद्ध किए, बड़ा बड़ा युद्ध करके जस कमाए, सारा जस मिट्टी में हो गया, तुम्हारी निंदा हो गई, तो निंदा सुन करके फिर तुम जीवित नहीं रह पाओ, मरना बदल सको, मरण से भी घातक होगा। इसलिए मैं कहता हूँ तुम धनुष उठाओ, युद्ध करो, अपने मन को समता में रह करके हानि लाभ में जय विजय में सम बुद्धि करके निर्णय मन को रख करके इस धर्म युद्ध को करो। भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि इस समय युद्ध छोड़ना ठीक नहीं, ऐसा युद्ध बड़े भगवान क्षति होता है, इस युद्ध में अगर हारते हो मारे जाओगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, जीतोगे तो पृथ्वी का राज होगा, ऐसे युद्ध को नहीं छोड़ना चाहिए। कंस भी एक क्षत्रिय है, वो सोच रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो अतिशय निर्दयता पूर्वक जीता है, इस संसार में पाप करके जीता है, उसका जीना मरण नहीं है, मरने से भी खड़ा है, स्वयं से जीवन खुशन करे। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए मांस खाता है, दूसरे प्राणी को कष्ट दे करके मांस आ रहा है, तो ऐसे प्राणी का देह खा करके अपने पेट में रह करके अगर कोई जीवित रहे तो जीवन को धिक्कार है। चाहे मछली या बकरा कुछ भी खा करके जी रहा है तो उससे तो अच्छा था, वो मर जाता है भूख से तड़प करके मर जाता है, मरने पर सब गति होती है। लेकिन ऐसे जीना जीने से क्या लाभ, दूसरे प्राणियों को दुख दे करके जीना ठीक नहीं। सहस जीवन खलुषण करें, खलुक हाथ निष्ठ, वह व्यक्ति निश्चय ही जीते हुए भी मरा है जो अत्यंत निशंसता से जीवन धारण करता है, अत्यंत निर्दयता से जीता है। जीना चाहिए लेकिन दया के साथ। सभी प्राणियों को अधिकार है जीने का इस ईश्वर की सृष्टि में। मच्छर भी जीवित रहना चाहते हैं। एक भक्त हमसे शाम को पूछ रहे थे कि मच्छर काटते हैं इनको क्या करते हैं। मैंने कहा कि आप क्या करना चाहते हैं, तो ये मलेरिया कर देते हैं। मैंने कहा कि आप बचिए, मच्छरदानी लगा लीजिए, नेट लगा लीजिए, इनको मारने का अधिकार नहीं है। याद रखिए कि एक मच्छर को भी मारने पर ईश्वर के विधान के विपरीत आचरण होते हैं, आप फंस जाएंगे। कर्मों की गति बड़ी सूक्ष्म है, किस कर्म का क्या फल मिलेगा, दंड मिलेगा, वो तो ईश्वर ही जानता है। इस विषय में एक प्रसिद्ध कथा है, महाराज धृतराष्ट्र पूछे हैं अपने सचिव से संजय से, तो संजय मैं कौन पाप किया था कि मेरे जीवित रहते मेरे 100 पुत्र मार दिए। संजय उत्तर नहीं दे पाए। फिर यही प्रश्न भगवान वेदव्यास देव से धृतराष्ट्र महाराज ने किया कि आप हमको बताएं कि मेरे किस पाप का फल है कि मेरे 100 पुत्र मेरे जीवित रहते हुए मार दिए। तो भगवान वेदव्यास देव ने उनको सुना है और शक्ति दिया प्राचीन उसी पाप का एक फल हुआ कि इस मनुष्य जन्म में, इस जन्म में आपको पुत्रों के निधन का दुख झेलना पड़ा। आपके पास बुद्धि थी, बहुत बड़ा धन के बच्चों को मारा था आपके कारण, तो आपका रसोईया मारा था और आप प्रशंसा किए थे कि बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं पूछा नहीं कि इसका मान, और सौ बच्चों का मांस, सौ हंसों का मांस उसी का एक दंड है। तो कब का किया हुआ पाप कब भुगतना पड़ेगा, कितना कर्म बाकी है, किस मिनट कौन कर्म का फल आएगा, इसको कोई नहीं जानता। इसलिए सावधान रहना चाहिए। जो कर्म शास्त्र में निषिद्ध है, मना किए गए, उनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। केवल मांस खाना यही नहीं, किसी भी तरह का दुख देना नहीं होना चाहिए। अगर कोई दूसरे को दुख दे करके जीता है तो जीना मरण से कुछ ज़्यादा खराब है। आदमी दुख से मर जाए, खाने बिना मर जाए, उतना दुख नहीं दे, लेकिन पाप करके भी मरे, पाप करके भी जीवित रहे तो जीवन से बड़ा घाटा। कौन सोच रहा है सये से जीवन खुलसम करे तो जीवे तयोत्यंत निशंसित है। जो मनुष्य बड़ी निर्भयतापूर्वक दूसरे को सता करके जीता है, जीवित रहते हुए वह निश्चित मरा होता है। देह मृत्य एकदम मनुजा सतम, देह अमृत एकदम। जब तक जीवित रहता है तब तो सभी लोग गाली देते हैं, अपने अपने घरों में सामने तो कोई नहीं बोलता है, गुप्त स्थान में अपने घर में सब लोग साफ देते हैं। और शरीर छूटने के बाद वह कहाँ जाता है, गंता तमोधाम, अंध तामिश नरक में गिरता है। ये कौन सोच रहा है कि सबसे निर्दय आदमी जीवित अवस्था में धिकार सहता है, सब लोग धिकार में, और मरने पर निश्चित अंध हताने से नरक में जाता है। नरक में कोई लाइट फाइट नहीं है, वहाँ कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। उसमें भी अंधताने से मिला जमराज के दुख ले जाते हैं पापी को, बहुत बड़े पर्वत के ऊपर चढ़ा देते हैं और पर्वत के शिखर से उसको नीचे पटकते हैं। उस समय गिर करके उसका शरीर शीशे की तरह कई टुकड़े में हो जाता है, बहुत मूर्छित होता है, बहुत दुख होता है। और फिर जीवित होता है शरीर, उसको ले जाते हैं ऊपर, फिर पटकते हैं। इस तरह लगातार पर्वत से पटकते रहते हैं, शरीर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। इसको अंग हटाने से वन में ले जाते हैं, तो वह वन ऐसे वृक्षों से युक्त रहता है जिसके पत्ते तलवार जैसे है, उसमें उसको मार मार करके चलाते हैं जमराज के दूध, और उसके कभी पेट में कभी आँख में कभी गला में पत्ते जो तलवार जैसे है वो धस जाते हैं, वो हाय हाय करके रोता है, बहुत बिलाप करते हैं। जो व्यक्ति अन्य प्राणियों को सताता है और मान में रखता है उसको ये अन्न जताने से मदद मिलता है। कौन सोचता है कि मैं देवकी का पद नहीं करूँ क्योंकि हम अतिशय पाप को लग रहा है, यह मेरी मान है। सबसे पहले तो यह स्त्री है, स्त्री पर दया करने के लिए, और उस पर मेरा संबंध है, इसके साथ मेरी बहन है, और तीसरी दशा है कि ये गर्भवती है, इस दुखमय स्थिति में इसका वध करना मेरे जीवन को नष्ट कर रहे हैं। वर्तमान में भी मेरी संपत्ति मेरे धन का नाश हो जाएगा, जस का नाश हो जाएगा, आयु का नाश हो जाएगा। उनको जो जीना है वो जीवन में से कई वर्ष माइनस हो जाए, इसीलिए पाप नहीं करना। और आगे डर है नरक का डर, नरक से डरना चाहिए। कंस जैसा पापी भी डर रहा है, उसको विश्वास है कि नरक है, और यह शरीर छोड़ने के बाद पापी को जाना पड़ता है, जाने के लिए कोई सुविधा नहीं, और पहुंचने के बाद जो स्वागत होगा तो होगा। एक बहुत लंबा रास्ता है, भागवत में कहा गया है 99,000 योजन लंबा रास्ता चलना पड़ता है, लगभग 4 लाख नहीं 1 लाख 4 लाख कोस 8 लाख माइल चलना पड़ता है। इतने लंबे रास्ते पर चलना पड़ता है, और चलते हैं कैसे, जमराज के दूध मार मार करके चलाते हैं। रास्ते में रोड कैसा है जाने के लिए, तप्त बालू का है, नीचे तप्त बालू का है, और ऊपर से सूर्य की गर्मी, बहुत प्रखर गर्मी, और हवा कैसी लगती है, दोनों तरफ दावानल लगे रहते हैं, वन में आग लगी रहती है, प्रचंड गर्म हवा होती है, उस गर्म हवा और ऊपर की गर्मी और नीचे की बालू की गर्मी, और खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं, रास्ते में खाना जल भी नहीं है, मीठे जल तो बात नहीं है, कहीं कोई रेस्टोरेंट नहीं, कहीं कोई होटल कहीं उठ नहीं सकते, पानी नहीं पी सकते, कुछ खाने को नहीं, तो भीतर पेट की गर्मी, भूख और दामानल की गर्मी, सूर्य की गर्मी, बालू की गर्मी, उसमें तड़पते हुए चलना होता है, और आठ लाख मील ये कोई कल्पना नहीं है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव को स्वयं गुरु जाना पड़ता है किसको अनेक प्रकार के काम करने वाले लोगों पर। इतना ध्यान रखिए कि इन नरकों का वर्णन सुनने के बाद महाराज परीक्षित काम कर जीवों की दशा देखते और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से कहा कि जान अनजान में पाप तो होते ही रहते हैं मनुष्य से, क्या कोई उपाय है जिससे पापी व्यक्ति भीतर में नहीं जा सकता है। तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा हाँ उपाय है, बहुत उपाय है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा उपाय है भगवान में यदि मन लग जाए तो सब पापों से मुक्ति हो जाती है, नरक नहीं जाना। उन्होंने बताया कि स्वप्न में भी यदि किसी का मन कृष्ण में लगा है, सपने में भी वो यदि किसी ड्यूटी के भगवान के ड्यूटी के दर्शन कर रहा है तो नहीं जाएगा। इसके विषय में एक सच्चा इतिहास उन्होंने सुना है। एक ब्राह्मण बहुत पाप किया जिसका नाम अजामिल, उसको नरक में ले जाने के लिए गंगा के दूत आ गए, पर फिर भी वो भगवान का नाम बोल दिया। वो भी अपने बच्चे का नाम बोला नारायण, उसी नाम के उच्चारण से भगवान के चार पार्षद आ गए और जनराज के दूतों पर डांट करके भगा दिया, नरक नहीं जाए। यह इतिहास है। अतः भगवान का नाम जपने वाले, भगवान का प्रसाद खाने वाले भक्तों को तो नरक यात्रा कोई चिंता नहीं, वो तो जाएंगे, परंतु अन्य जो भगवान नाम नहीं लेते हैं और पाप करते रहते हैं वो किसी भी तरह से किसी भी प्राश्चित से पुण्य कर्म से जग या दान आदि से नरक में जाना काम नहीं कर सकते। उनको तो जाना ही है। इसके विषय में सुखदेव जी कहते हैं ध्रुवम सोए थे नरक में पड़े, निश्चित है वह पाप